नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, पिछले डेढ़ साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आज सुबह उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में खालिस्तान समर्थक 3 आतंकवादी मारे गए। देश के विकास में किसानों के योगदान को मान्यता देने के लिए आज देशभर में किसान दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले डेढ़ वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मी समर्पण तथा सत्य निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं।
भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि सरकार के नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मातृभाषाओं में शिक्षा और परीक्षा की अनुमति देकर तथा 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए ग्रामीण युवाओं और सीमांत समुदायों की भाषाई बाधाएं भी हटाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभावान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं।
आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक नागरिक को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीमा शक्ति योजना शुरू की है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के असंख्य अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी योजना जैसे प्रयासों से भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 71,000 में से लगभग 50,000 नियुक्तियां अर्धसैनिक बलों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल नियुक्तियों में से लगभग 21,000 नियुक्ति पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वितरित किए गए हैं।
71,000 नियुक्तियों में से 20,901 नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है। इसके अतिरिक्त 11,355 शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है और 6,862 शेड्यूल ट्राइब में।
हमारे संवाददाता ने कुछ नव नियुक्त युवाओं से बात की। इन्होंने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
कुमारी नीलम, आज रोजगार मेले के अवसर पर शामिल होकर मुझे अत्यंत गौरवित महसूस हो रहा है और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के लिए आभारी रहूंगी, जिनके प्रतिनिधित्व में भारतीयों को इतने रोजगार देखने के लिए मिले हैं जितने पहले कभी किसी सरकार में नहीं मिले हैं।
मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे व मेरे परिवार को एक सुखद याद दी है जो हमेशा मुझे याद रहेगी।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने आज कहा कि विभिन्न स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले से एनडीए शासन में केंद्र सरकार की 10 लाख सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का पता चलता है। श्री सिंह पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में रोजगार मेले में नए भर्ती कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए नवनियुक्त युवाओं से समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने का आग्रह किया। पंजाब के जालंधर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय में रोजगार मेला आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। समारोह में श्री मोदी चर्च के कार्डिनल और बिशप सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में आज पीलीभीत जिले में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए। माना जा रहा है कि ये आतंकी 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सीएससी पूरनपुर अस्पताल भेजा गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने मीडिया को बताया कि ये तीनों आरोपी खालिस्तान कमांडो फोर्स नामक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े थे।
In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party are resident of the area of police station Kalanor and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Neeta, the chief of KZF who is Pakistan-based.
देश के विकास में किसानों के योगदान को मान्यता देने के लिए आज देश भर में किसान दिवस मनाया जा रहा है।
आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। ये दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नई दिल्ली में किसान घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर श्री धनखड़ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
2001 में किसान दिवस की शुरुआत की गई और एक ऐसे महापुरुष के नाम पर जिसने अपना जीवन किसान और ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र विकास को समर्पित किया।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला।
ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इसी साल चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
सरकार ने किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम कम करने के उपाय और दीर्घावधि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कचरे से संपदा बनाने की नई व्यवस्था तैयार की है। उन्होंने आज नई दिल्ली में सुशासन की परिपाटियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। डॉ सिंह ने स्कूलों में स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों के महत्व पर बल दिया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत को ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है जहां प्रशासनिक निर्णय आंकड़ों पर आधारित हों और उनके प्रभाव का आकलन किया जाए। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सांख्यिकी सलाहकारों की दूसरी समीक्षा बैठक के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार के प्रत्येक स्तर पर आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ही निर्णय लिए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कुशासन और लोगों से किए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए दस्तावेज जारी किया। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे किए और दिल्ली के लोगों को गुमराह किया। उन्होंने श्री केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। श्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को हराएगी।
ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है, जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है।
श्री केजरीवाल ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा के पास उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी श्रीराम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर व्हाइट हाउस के नेति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। कृष्णन डेविड साक्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जिन्हें व्हाइट हाउस का AI और क्रिप्टो प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस घोषणा के बाद कृष्णन ने सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप के प्रति आभार प्रकट किया। कृष्णन का जन्म चेन्नई में हुआ था। स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद वे अमेरिका चले गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सरकार का अटल नवाचार मिशन, भारत के नवाचार और उद्यमिता परितंत्र को मजबूती विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन के निदेशक डॉ चिंतन वैष्णव भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान अटल नवाचार मिशन से जुड़े प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर पूछ सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 78,371 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121 अंक बढ़कर 23,709 पर पहुंचा। देश के विभिन्न भागों में शीतलहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। एक
उत्तर भारत में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी ठंड और तेज बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में झरने और नदियों में बर्फ जम गई है। श्रीनगर में कल रात न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर और लुधियाना में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान में भी तेज शीतलहर का प्रभाव जारी है। इस बीच दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई और घना कोहरा छाया रहा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी है। लद्दाख में 27 से 29 दिसंबर के बीच कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गयी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आज सुबह उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में खालिस्तान समर्थक 3 आतंकवादी मारे गए। देश के विकास में किसानों के योगदान को मान्यता देने के लिए आज देश भर में किसान दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।